मुशरिकीन का क्या असर है इस फतह पे? भागना शुरू हो गए। मुशरिकीन भागे तो तीन गिरोहों में बट गए। सबसे बड़ा गिरोह ताइफ की तरफ भागा, दूसरे गिरोह ने नखला का रुख किया और तीसरे गिरोह ने औतास में मोर्चाबंदी की। याद रखिए कि वहाँ उनकी औरतें और बच्चे भी थे। आपने औतास में अबू मूसा अल अशरी के चचा अबू आमिर अशरी को सहाबा की एक जमात के साथ भेजा। इन्होंने दुश्मन को प्रोगंदा करके सारे माले गनीमत पर कब्जा कर लिया। प्रोगंदा सम्राज्य के दुश्मन को पीछे किया और जो कुछ वहाँ था वो सब मुसलमानों को मिल गया। अलबत्ता खुद अबू आमिर अल अशरी मार्के में शहीद हो गए और इनकी जगह अबू मूसा अशरी ने संभाली और कामयाब व कामरान वापस आए। देखिए अपनी जान पे खेले हैं लेकिन इस्लाम को फ़ायदा दिया। और यहाँ आप देखिए कि अबू मूसा अशरी भतीजा और अबू आमिर अशरी चचा। अबू आमिर अशरी चचा शहीद हो गए तो भतीजा सामने आ गया। हम ऐसे जज्बाती वक्तों में क्या करते हैं, हाय दुहाय रोना धोना। तो यहाँ से आप देखिए कि जब भी कोई अपना प्यारा जुदा होता है, किसी की मौत का वक्त आता है, तो अमूमन ऐसे वक्तों में फिर हम अपने दीन को पीछे डाल देते हैं। हमसे अपना दीन संभाला नहीं जाता। हम कहते हैं हाय चचा फौत हो गए हैं, अब हम लड़ने की सूझें, अब हम जंग करें। तो यहाँ से एक छोटी सी बात हमारे भी अमल की मिलती है कि जज्बाती लम्हों में भी दीन का काम नहीं छोड़ना। हमारी जिंदगियों में खुशियाँ भी आएंगी, गम भी आएंगे। हम अपने आप को जिन हालात में भी रखते हैं रखें, लेकिन दीन का दामन ना छूटे, ये बात है करने की। बहरहाल मुसलमानों को माले गनीमत मिल गया, वही बात जो कल अल्लाह के नबी ने फरमाई थी वो सच हो गई। इधर मुसलमान सवारों की एक जमात ने नखला भागने वाले मुशरिकीन का ताकुब किया और दुरैत बिन समा को जा पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। ये वही लीडर था जिसने शुरू में अच्छा मशवरा दिया था इनको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत और कैदियों को जमा करने का हुक्म दिया जिसकी कुल मकदार ये थी। अब ज़रा सुनिएगा कि मुसलमानों को क्या मिलता है हुनैन में। ऊँट तकरीबन 24,000, 24,000। और एक वो जंग भी थी कि जहाँ चंद ऊँटों के सिवा मुसलमानों के पास कुछ नहीं था। जी, बदर की जंग। हालात बदल गए ना। 40,000 से जायद बकरियाँ किसने गिनी होंगी, हजारों में 1,000, 2,000। और आप इमेजिनेशन में लाएं कितनी बड़ी जगह चाहिए होगी 40,000 बकरियों को रखने के लिए। चांदी 4,000 उकिया, तकरीबन 1,60,000 दिरहम। और इसके साथ औरतें और 6,000 बच्चे। क्या नुकसान हुआ मुसलमानों का? चंद सहाबे कराम थे ना जो इस महाज में निकले होंगे, सारा मक्का तो नहीं निकल आया। खैर कितनों ने पाई? मुसलमानों को खैर मिली ना ये सारी। इन सब को जेराना में जमा करके हजरत मसूद बिन अमर गफ्फारी को इनका निगरान मुकर्रर कर दिया गया। अब आप सोचिए कि मुसलमानों को इतना फायदा हुआ इस एक जंग की वजह से, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आज का मुसलमान अगर इस्लाम को फायदा देना चाहता है तो उसके लिए कितनी ही राहें खुली हुई हैं। लेकिन आज हम सुस्त हो गए, हम पर बहुत ज़्यादा ऐशकोश हो गए। हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल नहीं दिखता इल्ला माशाल्लाह। अब आप कह रहे हैं कि जंग ख़त्म, हालांकि जंग ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह के नबी ने इसके बाद ताइफ का रुख किया। भला क्यों? क्योंकि उनकी एक जमात वहाँ से ताइफ की तरफ भागी थी। रास्ते में मालिक बिन औफ नसरी के किले से गुजरे तो इसे ढाने का हुक्म दिया, ये लीडर था। ताइफ पहुंचे तो दुश्मन 1 साल की खुराक का इंतजाम करके किला बंद हो चुका था, बस इसका मुहासरा कर लिया। पहले मुसलमानों का पड़ाव करीब था इसलिए दुश्मन ने तीर बरसाकर मुसलमानों को जख्मी कर दिया। लिहाजा वो इस मुकाम से उठ आए जहां आज ताइफ की मस्जिद है। मुसलमानों ने दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए कई तदबीरें इख्तियार की लेकिन कोई तदबीर कारगर ना हुई। हजरत खालिद बिन वलीद रोज़ाना निकल कर दावत मुबारसत देते, यानी जंग की दावत देते, लेकिन कभी कोई आदमी सामने ना आया। इन पर मंजबीक नसब किया गया, जैसे तोप आज के दौर में आप कह सकते हैं, लेकिन ये भी कारगर साबित ना हुई। मुसलमान जानबाजों का एक गिरोह दो दुबाबों टापों में घुसकर नकब लगाने के लिए किले की दीवार तक पहुंच गया। दबाब भी असल में एक किस्म की आप सोच लें कि टनल है, जैसे बड़ी सी पाइप होती है ना, तो उसके अंदर से गुजर के इधर से उधर जाते थे, यानी खुफिया रास्ते होते थे। लेकिन दुश्मन ने इन पर लोहे के जलते टुकड़े फेंके, जिससे वो वापसी पर मजबूर हो गया और दीवार में नकब न लगा सका। इनके अंगूर और खजूर के दरख्त काटे गए, मगर उन्होंने अल्लाह और कराबत का वास्ता दिया तो छोड़ दिए गए। रसूलुल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया। मुनादी कौन? यानी आपकी तरफ से ऐलान करने वाले ने। जो गुलाम किले से उतर कर हमारे पास आ जाए वो आज़ाद है। इस ऐलान पर 23 गुलाम उतर आए। इन्हीं में अबू बकरा रदी अल्लाह अन्हो भी थे। ये नोट कीजिएगा, ये अबू बकर नहीं बल्कि अबू बकरा हैं। वो किले की दीवार पर चढ़कर एक चरखी की मदद से, जिसके ज़रिए राहट से पानी खींचा जाता है यानी कुएं से, लटक कर नीचे आ गए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कुनियत अबू बकरा रखी, क्योंकि अरबी में चरखी को बकरा कहते हैं। गुलामों का ये फरार किले वालों के लिए बहुत तकलीफ दे था। ज़रा 23 गुलाम उनके चले गए। मुहासरे ने तूल पकड़ा और फ़ायदा कुछ ना हुआ। आप कह लें कि अल्लाह के नबी ने उनकी वर्किंग फोर्स तोड़ दी ना, गुलाम निकल गए तो काम कौन करेगा। खैर, मुहासरे पर तकरीबन 20 दिन या फिर 1 महीना गुजरा और अल्लाह के नबी ने नौफल बिन मुआविया दिल्ली से मशवरा किया। उन्होंने कहा, लोमड़ी अपने भट में घुस गई है, अगर आप डट गए तो पकड़ लेंगे, अगर छोड़ भी दें तो यह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सुनकर आपने कूच का ऐलान फरमाया। बास लोगों ने गुजारिश की कि आप इन पर बददुआ करें। आपने फरमाया, अल्लाह सकीफ को हिदायत दे और इन्हें मुसलमान बना कर लिया। ये है प्यारी बात, दुश्मन को ख़त्म नहीं करना, उसकी दुश्मनी को ख़त्म करना, काफिर को नहीं मारना, कुफर को मारना। तो यहाँ आप देखिए कि मुसलमानों को एक और कामयाबी हुई। इसके बाद जो माल गनीमत और कैदी थे उनकी तकसीम का मौका आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जेराना वापस आकर 10 दिन से ज़्यादा वहाँ ठहरे रहे और माल गनीमत तकसीम ना किया। आपको इंतज़ार क्या था कि हवाजन तौबा करके आ जाएं और अपने माल और कैदी वापस ले जाएं। ये पॉइंट किसी को बताया जा सकता है? जी, अगर आपके जहनों में इन बातों को सुनते वक्त या इससे पहले जहनों में ये है कि अल्लाह के नबी इस तरह से क्यों करते थे और जंगें क्यों होती थी, तो ये नुक्ता भी देखिए। अगर माल गनीमत के लिए होते तो कहते फटाफट जमा कर लो, जल्दी से इसको बांट लो, कहीं लेने ना आ जाए। आपने 10 दिन तक इंतज़ार किया कि शायद वो वापस आ जाए। आपने क्यों 10 दिन इंतज़ार किया? कि ये लोग तौबा करके वापस आ जाएंगे और उनको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन जब वो ना आए तो फिर उसके बाद आपने माल गनीमत को बांटा और खुमस निकाला। वही बात, 5वां हिस्सा सूरत तौबा में 10वें पारे के शुरू में आप पढ़ेंगे इसको इंशाअल्लाह ताला। और इसे तालीफ कल्ब के लिए कमज़ोर इस्लाम वालों को दे दिया। तालीफ कहते हैं नरम करना, उल्फत से अल्लाफ युअल्लिफु तालीफ, यानी उनके दिलों को इस्लाम के करीब करने के लिए दे दिया। और कुछ ऐसे लोगों को भी दिया जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, ताकि इनकी नज़र में भी इस्लाम महबूब हो जाए। चुनांचे अबू सुफियान को 40 सोखिया चांदी 1600 दिरहम की मालियत की और 100 ऊँट दिए। फिर इतना ही इनके बेटे यजीद को भी दिया। फिर इतना ही इनके दूसरे बेटे मुआविया को भी दिया। सुफवान बिन उमैया को 100 फिर 100 फिर 100 यानी 300 ऊँट दिए गए। हकीम बिन हिसाम, हारिस बिन हारिस बिन गल्दा और उयना बिन हसन, अकरो बिन हाबिस, अब्बास बिन मरदास, अलकमा बिन थलासा, मालिक बिन औफ और अला बिन हारसा, हारिस बिन हिशाम, जुबैर बिन मुअत्तम, सुहैल बिन अमर और खुतब बिन अब्दुल उज़्ज़ा वगैरह को 100 ऊँट दिए और कुछ और लोगों को 50-50 ऊँट दिए। यहाँ तक के लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बेदरेख अतिया देते हैं कि इनको फ़कर का भी अंदेशा नहीं। चुनाचे माल की तलब में बद्दू आप पर टूट पड़े और आपको एक दरख्त की जानिब सिमटने पर मजबूर कर दिया, जिसमें आपकी चादर फंस गई। आपने फरमाया, मेरी चादर ले लो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप मेरे पास तहामा के दरख्तों की तादाद में भी चौपाए होते तो मैं इन्हें तुम में तकसीम कर देता, फिर तुम मुझे बखील ना पाते, ना बुज़दिल ना छूटा। यहाँ से आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल देख लीजिए, असल दिखती है। देखिए, यहाँ से पता चलता है कि हम लोग जब अपने दिल से माल की मोहब्बत निकाल देते हैं ना, तो इतना ज़्यादा माल भी इंसान की नीयत ख़राब नहीं करता। कितना एक इंसान अपने दिल को माल से दूर करे, लेकिन इतना ज़्यादा माल देखकर और उसको दूसरों को देना, और है भी अल्लाह के रास्ते का, इसके बावजूद भी लोगों का दिल नहीं खुलता। यहाँ से बहुत सबक की बात है, कभी भी थोड़ा माल आपके सामने आ जाए या ज़्यादा, नज़र भर के ना देखें, लोगों के साथ शेयर कर दें। आप देखेंगे कि लोग जब आपके उस माल के अंदर बेरग़बत होने को देखेंगे ना, तो खुद ब खुद उनको भी इसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला माल से बेरग़बती होगी। और अगर सबसे पहले अपना ही घर भरा जाए, मुझे क्या मिला, मेरे लिए क्या बचेगा, मैं क्या इससे ले सकती हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि हालात बदल जाते हैं। बहरहाल, इस तरह से बहुत बड़ा माल मुसलमानों को मिला और अल्लाह के नबी ने वो लोगों में बांट दिया। फिर आपने एक ऊँट की कोहान से कुछ बाल लिए और फरमाया, वल्लाही मेरे लिए तुम्हारे माले फै में से कुछ भी नहीं, हत्ता कि इतना सा बाल भी नहीं, सिर्फ खुम्स है, और खुम्स भी तुम पर ही पलटा दिया जाता है, लिहाजा सुई और धागे तक अदा करो, क्योंकि खयानत साहिबे खयानत के लिए क़्यामत के रोज़ आर, रुसवाई और आग होगी। ये है ख़तरे की बातें, इज्तमाई माल के बारे में जवाबदेही। ये वो चीज़ है कि जो इंसान के हाथ ठंडे कर देती है। अगर उसके पास दीन के नाम पे कोई चीज़ आए या जाए, तो उसको अपने लिए भी यही मेयार रखना चाहिए कि एक बाल के बराबर भी चीज़ मुझे नहीं लेनी, दूसरी बातें नहीं, जो हक मेरा है बस वो मेरा हक है, ये नहीं कि अपने हक से ज़्यादा ले लिया जाए। खैर, ये चीज़ बात सुनी तो लोगों ने एक मामूली चीज़ तक गनीमत में से जो कुछ लिया था सब वापस कर दिया। ये है तज़किया। कौन आपके सर पे कैमरे लगाए और कौन आपके सर पे पहरे दे और कौन रूल्स की चक्की में आपको बांटे, अंदर का तकवा सबसे खूबसूरत रूल होता है। फिर लोग अल्लाह से डर के काम करते हैं और अल्लाह के डर से चीज़ों को सही रखते हैं, और अगर आप सर पे खड़े रहेंगे, ज़रा सर से हटेंगे तो कोई कहीं भी डंडी मार देगा, और इसी तरह की खयानतें फिर आसान होती हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित को माल गनीमत तकसीम करने का हुक्म दिया। गनीमत की मस्कूरा मकदार के हिसाब से खुमस निकालने के बाद एक आदमी के हिस्से में जितना माल गनीमत आता है उसकी मकदार यह है, तकरीबन 1.5 ऊंट, 2.5 बकरी, 10 दिरहम और एक कैदी का एक तहाई हिस्सा। अब अगर एक आदमी को 10 दिरहम देकर बाकी कोई एक ही चीज़ दे दी जाए, तो इसके हिस्से में या तो सिर्फ 4 ऊंट आएंगे, या सिर्फ 40 बकरियाँ, या एक कैदी का सिर्फ 2/3 हिस्सा। नोट कीजिएगा, इतनी कैलकुलेशन की क्या ज़रूरत थी। चलो ना, सबके नीयतें भी अच्छी थी, दिल भी अच्छे थे, ले लो जिसने जो लेना है, चलो कोई बात नहीं, किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, किसी ने ज़्यादा लिया, नहीं। यहाँ से दीन के ऑर्गेनाइजेशन सीखे कि हड़बूंग नहीं बची। अब आप सोचिए ना, आधी बकरी, तिहाई ऊँट, फलां ये वो, 1.5 ऊँट, किसी को 1.5 मिलना था भला, कि एक के साथ दूसरा आधा कटे, नहीं, हिस्से, फिर उस हिस्से 1.5 में से दूसरे ने अपना छोड़ा तो उसके बदले में क्या दिया। और ये वहाँ हो रहा है जहाँ कोई कैलकुलेटर्स नहीं थे और कंप्यूटर्स नहीं थे और इकोनॉमिक्स पढ़े हुए लोग नहीं थे, तो यहाँ से पता चलता है कि दीन के काम करने वालों को हिसाब किताब में बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। एक पैनी का भी 10वां हिस्सा इधर से उधर अगर हो गया, कल क़यामत के दिन उसकी जवाबदेही होगी। अब ये सब तो हो रहा था, अच्छे मुखलसीन के दिलों में भी कभी कभी शिकवे आ जाते हैं। इसी में से एक शिकवा अनसार का है। अल्लाह के नबी ने उनको कैसे टैकल किया, ये देखते हैं। अनसार को रसूलुल्लाह की इस फेल पर हैरत हुई कि आपने मुअल्लफत कुलूब को अंदाजे से बढ़कर तोहफे दे दिए, यानी न्यू मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम की मोहब्बत दिलाने के लिए अल्लाह के नबी ने कुछ ज़्यादा ही दे दिया और अनसार को कुछ ना दिया। चुनाचे बाज़ अंसार ने कहा, ये कैसी ताज्जुब की बात है कि आप कुरैश को दे रहे हैं और हमें छोड़ दिया है, हालांकि हमारी तलवारें इनके खून से टपक रही हैं, यानी कि लड़े तो हम, तो आपने उनको दे दिया। अब ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, हमारे लिए इसमें अमल की बहुत बड़ी बात है। ये बात अंसार के रईस साद बिन उबादा ने नबी सल्लम को पहुँचाई। आपने सिर्फ अंसार को जमा किया, अल्लाह की हमदो सना की, फिर अल्लाह ने आप पर जो एहसान किया था उसे जिक्र फरमाया, फिर फरमाया, अंसार के लोगो, तुम अपने जी में दुनिया की एक हकीर सी घास के लिए नाराज़ हो गए, जिसके ज़रिए मैंने लोगों का दिल जोड़ा था ताकि वो मुसलमान हो जाएं اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ پر چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ کیا سوچتے ہیں آپ ان باتوں کو سنتے وقت؟ یاد رکھیے، جب دین سانجھا ہوگا نا تو دین کا فائدہ مطلوب ہوگا، اور صرف اپنی ذات، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنی جگہ، یہ بھی خدا بن جائے گی نا، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دلوں میں، دماغوں میں سوال اٹھیں گے۔ یہاں سے لیڈرشپ کوالٹیز بھی پتہ چلتی ہیں۔ لیڈرز کو پتہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، وہ بڑے بھولے لیڈر ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس وقت کیا چیز زیادہ اہم ہے، کیا کم ہے۔ اپنے من مرجی ہونے سے، اپنے موڈ کے غلام ہو کر، کر لیا کام تو ہو گیا، نہیں کیا تو نہیں ہوا، اور دین کے نام پہ جتنا مرضی ٹھپا لگ جائے، ایسے لوگ لیڈر بننے کے حقدار نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی کی یہ بانٹ عقل کی بانٹ تھی، اور آپ دیکھیے کہ تذکیر کا انداز کتنا پیارا ہے، کتنی بڑی یہاں جنگ ہو سکتی تھی، خانہ جنگی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کیسے ٹیکل کیا۔ تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ میں خوبی دے کہ لوگوں کو رام کرنا، اچھی بات کرنی، اور وہ بات تب کرنی جب اس بات کے کرنے کا موقع ہو۔ بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، موقع غلط ہوتا ہے، بعض دفعہ موقع بالکل ٹھیک ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز غلط ہوتا ہے۔ تو دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبی دے کہ ہم لوگوں کو کیسے ٹیکل کریں۔ اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی، یا حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا کہ اللہ میں تجھ سے حکم مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، حکمہ، حکمت، اور اللہ تو مجھے چیزوں کو میٹر سے ہی کرنا سکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی زیادہ آپ کے اندر حکمت آتی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھول دے گا، اور اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے بھی کھلتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت دے دے۔ ہم سب مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، کہ اللہ تو ہم سب پہ اپنے معاملات کو آسان کر دے۔ یہاں پہ اس جنگ کا ایک بنیادی حصہ پورا ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں قبیلہ خوازن نے تیر اندازی کی تھی، اسی لیے کچھ معاملہ بھی ان کے ساتھ بگڑتا ہوا دکھتا ہے۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا، تو خوازن کا وفد آ گیا۔ ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی جو حکمت عملیاں تھیں اس سے کیا فائدے ملتے ہیں۔ اسلام بھی قبول کیا، بیعت بھی کی، پھر آپ کے پاس آ کر یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے جن کو گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ کیسے پیچھے وہ اپنی قوم کو لے کے آگے تھے، عورتوں کو، تو جب عورتیں قید میں آئیں تو اب ان کو یار لگا کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ چیز انہوں نے شیر کی صورت میں کہی، فَمْنُنْ عَلَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ فِي كَرَمٍ فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرْ أَمْنٌ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْدَأُهَا إِذْ فُوكَ تَمْلَؤُهُ مِنْ مَحْدِهَا الدَّرَرْ۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر احسان فرمائیے، آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے، آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا دودھ پیتے تھے، جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا۔ اور پھر مزید اشعار کہے، آپ نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہٰذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو، उन्होंने कहा, हमारे नज़दीक ख़ानदानी शर्फ के बराबर कोई चीज़ नहीं। हमारी औरतें और बच्चे हमें वापस कर दें और हम बकरी और ऊँट के बारे में कुछ न बोलेंगे। आपने फरमाया, अच्छा तो जब मैं जोहर की नमाज़ पढ़ लूँ तो तुम लोग उठ पड़ो, अपने इस्लाम का इजहार करो और कहो कि हम भी आप लोगों के दीनी भाई हैं। फिर कहो कि हम रसूलुल्लाह को मुसलमानों की जानिब और मुसलमानों को रसूलुल्लाह की जानिब सिफारशी बनाते हैं कि आप हमारे कैदी हमें वापस कर दें। इन लोगों ने ऐसा ही किया। जवाब में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा और बनू अब्दुल मुत्तलिब का जो हिस्सा है वो तुम्हारे लिए, यानी कि मैं अपना हिस्सा तो छोड़ देता हूँ और मैं अभी लोगों से पूछे लेता हूँ, यानी मैं तो छोड़ता हूँ बाकियों से पूछता हूँ। ज़बरदस्ती नहीं की, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, बल्कि कहा कि छोड़ देता हूँ, बाकियों से पूछ लेते हैं। इस पर अंसार और महाजरीन ने कहा, जो हमारा हिस्सा है वो रसूलुल्लाह के लिए है। अलबत्ता बाज़ आराब, मसलन अकरो बिन हाबिस, उयना बिन हसन, अब्बास बिन मरदास ने इनकार किया। आपने फरमाया, जो बखुशी वापस कर दे तो बहुत अच्छी राह है, वरना वापस तो बहरहाल कर दे, और आइंदा जो सबसे पहला माले फ़ै हासिल होगा इससे हम इसको एक हिस्से के बदले 6 हिस्से देंगे। इसके बाद उयना बिन हसन के अलावा सब लोगों ने बखुशी माल वापस कर दिया और रसूलुल्लाह ने सब कैदियों को एक एक कीमती चादर अता फरमाई। कैदी वापस करने के बाद एक आदमी के हिस्से में या तो सिर्फ 2 ऊँट आते थे या 20 बकरियाँ। कितना बड़ा दिल था, ये उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं ना। और ये जो बीच में जिक्र हुआ था औरतों के नाते से, तो याद रखिए कि इसमें अल्लाह के नबी की जो रज़ाई माँ थी और रज़ाई बहन शीमा, उधर से कुछ लोग आए हुए थे, तो आपने उन सब के मान में भी ये सब कुछ किया। बस हिकमतें सीखे, मैं तो एक एक लफ्ज़ के अंदर से अपने लिए अमल की बातें लेती हूँ कि अल्लाह के नबी कैसे कभी माल दे के लोग बचाते थे, कभी कैदी दे के लोग बचाते थे। हर जगह आप फील करेंगे कि अल्लाह के नबी ने इंसान को बचाया, यानी ताल्लुकात को बचाया। अपना एक साथी नहीं ज़ाया होने देना, कीमत जितनी मर्जी उसकी देनी पड़े दे दो। इसके बाद मुसलमान जब वापस आते हैं, माले गनीमत की तकसीम से बात, तो उम्रे का एहराम बांधा, यही उम्रे जेराना है। उम्रे से फारिग होकर मदीना वापसी की राह ली और ज़ी क़ादा में 6 दिन या 3 दिन बाकी थे जब मदीना पहुंच गए, यानी वापसी पे उम्रा भी हो गया। और ये ज़ी क़ाद सन 8 हिजरी में हुआ। एक आध छोटे छोटे वाक़यात हुए थे जो इस जंग के एंड पे बनु तमीम को अदब सिखाने के लिए, यानी तादीबन, और इनका कबूल इस्लाम मुहर्रम सन 9 हिजरी से मुतल्लिक ये वाक़ मदीना में खबर पहुंची कि बनु तमीम कबाइल को जिजिया ना देने पर उकसा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने उयना बिन हिसन फजारी की क्यादत में 50 सवारों का एक दस्ता भेजा। उन्होंने सहरा में हमला करके इनके 11 आदमी, 21 औरतें और बच्चे गिरफ्तार कर लिए और इनको मदीना ले आए। इसके बाद बनु तमीम के 10 सरदार आए और मुकाबला खिताबत और शायरी की ख्वाहिश की। चुनाचे इनके खतीब अतारुद बिन खातिब ने खुतबा दिया, जिसका जवाब हजरत साबित बिन कैस ने दिया। फिर इनके शायर ज़बरकान बिन बदर ने अशार कहे। जवाब में हसान बिन साबित ने अपने अशार पेश किए। उन्होंने इस्लाम के खतीब और शायर की फजीलत का इतराफ़ किया और मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह ने इनके कैदी वापस कर दिए और इनको बेहतरीन तहाइफ से नवाजा। ये भी आप हिकमतें सीख लें इससे कि किस तरह से अल्लाह के नबी के दिल में माल की कोई मोहब्बत नहीं थी और जहाँ हथियार दिखाने पड़े हथियार दिखा दिए, जहाँ मुसलमानों को कुछ चीज़ छोड़कर दुश्मनों से कोई चीज़ लेनी पड़ी तो वो ले ली। जंगें असल में हिकमतें सिखाती हैं, और जब तक अमली मैदान में इंसान नहीं कूदता, हिकमत आके नहीं देती। इसी तरह बनू तय के फिल्स का इन्हदाम और अदी बिन हातिम का कबूल इस्लाम। रबी अव्वल 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब की सरकर्दगी में 100 ऊँट और 50 घोड़ों समेत 150 आदमियों का एक दस्ता बनू तई का फिल्स नामी बुत ढाने के लिए रवाना किया। आप देख रहे हैं, साथ ही साथ सब तरह के काम चल रहे हैं, जिहाद भी, उम्रा भी, अमली जिहाद भी, हर तरह से कोशिश हो रही है कि इस्लाम की मदद की जाए। हज़रत अली के हाथ में काला परचम और सफ़ेद झंडी थी। उन्होंने जुदो करम में शोहरत याफ्ता हातिम ताई के मोहल्ले पर छापा मारा। ऊंट बकरियां हाथ आईं और औरतों बच्चों को कैद किया। कैदियों में हातिम ताई की साहबजादी सफाना भी थी। जब वो मदीना लाई गईं तो रसूलुल्लाह ने इनको एहसान के तौर पर बिला फिदिया छोड़ दिया। और इनका इकराम करते हुए इन्हें सवारी भी दी। वो मुल्क शाम गईं, जहां इनके भाई अदी बिन हातिम भागे हुए थे। इनसे रसूलुल्लाह के बारे में कहा कि आपने ऐसा काम किया है कि तुम्हारा बाप भी वैसा नहीं कर सकता। बस इनके पास रग़बत जो खौफ के साथ जाओ। चुनाच अदी किसी अमान या तहरीर के बगैर आ गए और जब रसूलुल्लाह से गुफ्तगू की तो वहीं मुसलमान हो गए। वो रसूलुल्लाह के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी ने आकर फाके की शिकायत की, फिर एक दूसरे आदमी ने आकर रहजनी की शिकायत की। फिर आपने फरमाया, अदी तुमने हीरा देखा है? अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे कि हौदज नशीन औरत हीरा से चलकर आएगी, खाना काबा का तवाफ़ करेगी और इसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना होगा। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम किसरा के ख़जाने फतह करोगे। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे कि आदमी हथेली पर सोना चांदी लेकर निकलेगा और ऐसे आदमी को तलाश करेगा जो इसको कबूल करे, मगर इसे कबूल करने वाला कोई ना मिलेगा। यहाँ से आप देखिए कि किस तरह अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये एक बात पूरी करवाई और इस तरह से ये सारे के सारे हालात जो थे मुसलमानों के सामने आ गए। और इन हालात में मुसलमान अपने आप को इन चीज़ों के अंदर लेके जा रहे हैं। हम सब भी अपने ऊपर इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करके देखें तो अमल की बेशुमार चीज़ें आपको दिखेंगी। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को अपने हाथ से न जाने दें। अल्लाह ताला जब भी आपको मौका देता है आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठा लिया करें। और फिर देखें कि जब भी एक बंदे को अल्लाह के हुक्म से ये सब चीज़ें मिलती हैं तो उसमें कितनी बड़ी खैर होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लम मुख्तलिफ हालात को टैकल करते हैं और एक इंसान को अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी खूबी मिलती है कि किस वक्त किन हालात में किससे क्या बात करनी है। इसी चीज़ का नाम लीडरशिप है, इसी का नाम हिकमत है, इसी को मामला फहमी कहते हैं। और यही चीज़ें फिर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती हैं। बाज़ दफ़ा हम ये सोच लेते हैं कि मेरे से कोई काम क्यों नहीं होता, फ़लाँ से क्यों हो जाता है, तो उसकी वजह यह है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इंसानों को नहीं पढ़ते। और याद रखिए कि इंसानों को पढ़ना बहुत मुश्किल है। सबसे आसान किताब है कागज़ पे लिखी हुई किताब पढ़ना और सबसे मुश्किल किताब है इंसान की किताब पढ़ना। इसलिए एक इंसान जब तक ये चीज़ें नहीं सीखता उसको आगे बढ़ने के मौके मिल भी जाएं तो वो उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकता। पूरे गज़वे के दौरान जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इसमें हमारे गौर की है वो ये है कि एडवर्स कंडीशंस में किस तरह टैकल करना है। आम हालात में सब ठीक चल रहा होता है लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो सब की मत मारी जाती है। लीडर कौन होता है? जो मुश्किल हालात में भी जमा रहे। और दूसरी चीज़ जो इसमें मुझे नज़र आई वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लम किस तरह माल की बांट में अपने जहन से बात करते हैं। हत्ता के अंसार के जहन में ख्याल आ भी गया कि नए लोगों को इतना देने की क्या ज़रूरत थी, हमें क्यों नहीं दिया, तो अल्लाह के नबी ने उनको कितने प्यार से समझा दिया कि लोगों को माल मिल रहा है, तुम्हें अल्लाह का रसूल मिल रहा है, क्या लेते हो, क्या ये माल के चंद टुकड़ों की वजह से तुम अपने रसूल से नाराज़ हो गए। और उसके बाद किस तरह उनका दिल पिसा और वो भी रोए और अल्लाह के नबी भी रोए। तो क्या पता चला कि इंसान अपने लीडर पर ट्रस्ट करता है और फिर जब वो हालात बदल जाते हैं तो उसको फिर समझ आती है कि इस वक्त किस चीज़ में क्या हिकमत थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अमल वाला बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।